एकत्र ज्ञान गोष्ठी। आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है एकत्र ज्ञान गोष्ठी में।
आज हम दर्शन शास्त्र की एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद दिलचस्प शाखा में गोता लगा रहे हैं, मेटाफिजिक्स यानी तत्वमीमांसा।
हाँ, मतलब ये वो सवाल हैं जो हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं। ये दुनिया क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है।
बिल्कुल, और इन बड़े सवालों को समझने के लिए हम स्टीफन मम्फोर्ड की किताब मेटाफिजिक्स का सहारा ले रहे हैं। ये किताब हमें चुनौती देती है कि हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं उसे बस यूं ही ना मान लें, बल्कि उसकी असलियत पर सवाल उठाएं।
और ये आज के दौर में तो और भी जरूरी हो गया ना।
हाँ,
जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, यहाँ तक कि अपनी ऑनलाइन पहचान, मतलब इन सब चीजों से घिरे हैं, तो वास्तविकता क्या है, ये सवाल और भी पेचीदा हो जाता है।
सही बात है। मम्फोर्ड की किताब इन्हीं गहरे सवालों को समझने का एक रास्ता खोलते हैं और दिखाती है कि मेटाफिजिक्स सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि हमारे सच को समझने की कोशिश है।
तो चलिए पहले लेखक स्टीफन मम्फोर्ड, इनसे थोड़ी जान पहचान कर लें।
हाँ, ये सिर्फ एक अकेडमिक दार्शनिक नहीं है बल्कि डरहम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और मेटाफिजिक्स की दुनिया में खासकर कुछ मुश्किल हिस्सों पर अपनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं।
बिल्कुल, खास तौर पर कार्य कारण, मतलब कॉजेशन, यानी एक चीज दूसरी चीज का कारण कैसे बनती है, और चीजों के स्वभाव या शक्तियां, प्रॉपर्टीज एंड डिस्पोजिशंस, मतलब चीजों में ऐसा क्या है जो उन्हें वैसा व्यवहार करने पर मजबूर करता है जैसा वे करती हैं।
अच्छा,
उन्होंने डिस्पोजिशंस और पावर्स, अ स्टडी इन मेटाफिजिक्स जैसी अहम किताबें लिखी हैं जो दिखाती हैं कि वो इन विषयों में कितनी गहराई तक जाते हैं।
उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो मेटाफिजिक्स को किसी पुराने धूल भरे संग्रहालय की चीज की तरह नहीं देखते।
हाँ, सही।
वो इसे एक जीवित सांस लेती हुई बहस की तरह पेश करते हैं। उनका एक बड़ा आइडिया ये है कि चीजों में सिर्फ गुण नहीं होते बल्कि असल शक्तियां होती हैं, जैसे कांच में टूटने की शक्ति।
हाँ, ये थोड़ा अरस्तु जैसा लगता है ना।
बिल्कुल।
हाँ, है तो, लेकिन वो इसे आज के विज्ञान और सोच के साथ जोड़ते हैं
और यही बात उन्हें इस विषय का परिचय देने के लिए बेहतरीन बनाती है। वो मुश्किल विचारों को लेते हैं और उन्हें इस तरह समझाते हैं कि उनकी गहराई भी बनी रहे और वो हमें समझ भी आ जाए।
सही कहा। वो हमें ये महसूस कराते हैं कि मेटाफिजिक्स कोई डरावनी या मतलब बेकार की चीज नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिज्ञासा का ही एक विस्तार है।
तो ये किताब मेटाफिजिक्स असल में क्या करने की कोशिश कर रही है?
देखिए, ये उन लोगों के लिए एक तरह का शुरुआती नक्शा है जो दर्शन शास्त्र में नए हैं या बस ब्रह्मांड के बुनियादी सवालों को लेकर उत्सुक हैं कि ये सब कैसे काम करता है। मम्फोर्ड का मकसद है मेटाफिजिक्स के चारों ओर जो एक रहस्य का पर्दा सा पड़ा है उसे हटाना।
वो ये साबित करते हैं कि मेटाफिजिक्स कोई हवा हवाई बातें नहीं है।
हाँ।
बल्कि वास्तविकता के बुनियादी ढांचे को समझने का एक जरूरी और तर्क पर आधारित तरीका है।
किताब का मूल सवाल ये है, जो कुछ भी मौजूद है उसकी बुनियादी बनावट क्या है और हम इसके बारे में सोच समझकर कैसे बात कर सकते हैं।
हाँ, और वो दिखाते हैं कि ये सवाल कहीं बाहर से नहीं आते।
हाँ।
हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ही निकलते हैं।
जैसे?
जैसे समय सच में बीत रहा है या ये सिर्फ हमारा एहसास है।
हाँ।
या क्या मैं आज वही इंसान हूँ जो मैं 10 साल पहले था।
हाँ, बिल्कुल।
ये किताब हमें सिखाती है कि इन सवालों पर एक दार्शनिक यानी मेटाफिजिकल ढंग से कैसे सोचा जाए।
किताब हमें कुछ बड़े पड़ावों की यात्रा पर ले जाती है। अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस, क्या चीजें सच में हैं, फिर पहचान, आइडेंटिटी, चीजें बदलने पर भी वही कैसे रहती हैं।
बदलाव, चेंज, ये होता कैसे है।
हाँ, और कारण कार्य, कॉजेशन, क्यों कुछ होता है, समय, टाइम, ये है क्या, और संभावना, पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता था।
तो ये सिर्फ सिद्धांतों की लिस्ट नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का निमंत्रण है कि आओ साथ में सोचें।
चलिए अब किताब के कुछ मुख्य विचारों में और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत होती है इसी सवाल से कि मेटाफिजिक्स आखिर है क्या।
हाँ, मम्फोर्ड कहते हैं कि ये सिर्फ बड़े दार्शनिकों का काम नहीं है। जब भी हम पूछते हैं कि क्या ये सच है या इसका असली मतलब क्या है, हम अनजाने में मेटाफिजिक्स कर रहे होते हैं।
अच्छा।
हाँ, ये वास्तविकता की बुनियादी प्रकृति के बारे में सवाल पूछना है।
और ये विज्ञान से अलग कैसे है?
देखिए, विज्ञान पूछता है ये खास चीज कैसे काम करती है, जैसे एक पेड़ कैसे बढ़ता है। मेटाफिजिक्स और भी बुनियादी सवाल पूछता है, होने का मतलब क्या है?
क्या
पेड़ सच में मौजूद है, उसी तरह जैसे मेरा विचार मौजूद है? मम्फर्ड तर्क देते हैं कि विज्ञान भी कुछ मेटाफिजिकल मान्यताओं पर टिका है।
जैसे?
अच्छा, जैसे ये मानना कि प्रकृति के नियम हर जगह एक जैसे काम करते हैं, तो मतलब मेटाफिजिक्स से बचना मुमकिन ही है।
अच्छा, फिर आता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का सवाल। क्या चीजें सच में मौजूद हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना?
हाँ, लगता तो है, लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ भौतिक चीजें ही मौजूद हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे ये माइक, या फिर नंबर 7, या न्याय का विचार, या फिर किसी कहानी का पात्र जैसे शर्लक होम्स? क्या ये भी किसी तरह से मौजूद हैं?
ये तो सोचने वाली बात है।
हाँ, इसी को सत्ता मीमांसा कहते हैं, यानी क्या क्या मौजूद है इसका अध्ययन।
और यहीं पर एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या होना या मौजूद होना खुद एक गुण है, जैसे नीला होना एक गुण है?
हाँ, या ये कुछ और ही है। दार्शनिक इस पर बहस करते हैं कि हमें किन चीजों के अस्तित्व को मानना चाहिए, क्या सिर्फ वही जो वैज्ञानिक रूप से साबित हो सके,
या फिर विचारों, संख्याओं और संभावनाओं को भी जगह देनी चाहिए। ये तो हमारी दुनिया की तस्वीर को बहुत बदल सकता है।
बिल्कुल। अब आते हैं एक और बड़ी पहेली पर, पहचान और बदलाव, आइडेंटिटी एंड चेंज।
ओह हाँ, ये वाला। चीजें लगातार बदलती रहती हैं, फिर भी हम उन्हें वही मानते हैं, कैसे?
सोचिए, गंगा नदी का पानी हर पल बदल रहा है, लेकिन हम उसे गंगा नदी ही कहते हैं।
हाँ।
या वो मशहूर कहानी शिप ऑफ थीसियस।
हाँ हाँ, सुना है। अगर किसी जहाज के सारे तख्ते धीरे धीरे बदल दिए जाएं, तो क्या वो अंत में वही जहाज रहेगा?
एग्जैक्टली। यहाँ पर दो तरह की पहचान का फर्क समझना जरूरी है। गुणात्मक पहचान मतलब दो चीजों का एक जैसा दिखना,
और संख्यात्मक पहचान?
हाँ, संख्यात्मक पहचान मतलब एक ही चीज होना। थीसियस का नया जहाज शायद पुराने जैसा दिखे, गुणात्मक पहचान, पर क्या वो सचमुच वही जहाज है? संख्यात्मक पहचान।
और ये सवाल सिर्फ जहाजों का नहीं, हमारा अपना है।
सही कहा। हमारे शरीर की कोशिकाएं बदल जाती हैं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं बदलती हैं, तो फिर क्या चीज है जो मुझे मैं बनाए रखती है? मेरा शरीर, मेरी यादें, या कुछ और?
बाप रे, ये सवाल तो मतलब सिर घुमा देता है।
बिल्कुल। और जब हम बदलाव की बात करते हैं, तो अगला सवाल आता है कार्य कारण का, यानी कॉजेशन का, यानी बदलाव होता कैसे, एक चीज दूसरी चीज का कारण कैसे बनती है।
हाँ, और ये मम्फर्ड का पसंदीदा इलाका है, आपने बताया था।
हाँ, और यहाँ उनका नजरिया काफी, कह सकते हैं, क्रांतिकारी है। आमतौर पर हम मानते हैं कि कारण प्रभाव पैदा करते हैं। मैंने बटन दबाया, लाइट जल गई, सिंपल।
लेकिन डेविड ह्यूम जैसे बड़े दार्शनिक ने कहा कि हमने असल में कभी कारण को देखा नहीं है। हमने बस ये देखा है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है बार बार।
हाँ, उसे उन्होंने लगातार साथ होना कहा, कॉन्स्टेंट कंजंक्शन।
ह्यूम के मुताबिक हमने कोई जरूरी कनेक्शन या शक्ति नहीं देखी जो पहली घटना को दूसरी से जोड़ती हो।
यहीं पर मम्फर्ड का स्वभाववाद या डिस्पोजिशनलिज्म या शक्तियों के सिद्धांत आता है, जो ह्यूम को चुनौती देता है।
अच्छा, वो क्या है?
मम्फर्ड कहते हैं, नहीं, चीजों में सिर्फ गुण नहीं होते, उनमें असली आंतरिक शक्तियां या स्वभाव होते हैं।
शक्तियां? जैसे?
जैसे कांच इसलिए टूटता है क्योंकि उसमें नाजुकता की शक्ति है, नमक पानी में घुलता है क्योंकि उसमें घुलनशीलता की शक्ति है। तो कारण कार्य सिर्फ घटनाओं का एक के बाद एक होना नहीं है, बल्कि इन शक्तियों का सक्रिय होना है।
ये तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब चीजें सिर्फ नियमों का पालन नहीं कर रही।
नहीं, बल्कि वे अपने अंदरूनी शक्तियों की वजह से सक्रिय रूप से दुनिया में काम कर रही हैं। ये दुनिया को ज्यादा गतिशील, ज्यादा जिंदा महसूस कराता है ना?
हाँ, बिल्कुल। चीजें वैसी हैं जैसी वे हैं, और वैसा करती हैं क्योंकि उनमें वो शक्ति है।
समय के बारे में क्या? समय तो शायद सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है।
हाँ, बिल्कुल। मम्फर्ड हमें अलग अलग सिद्धांतों से रूबरू कराते हैं। क्या सिर्फ वर्तमान क्षण ही वास्तविक है, प्रेजेंटिज्म?
यानी अतीत जा चुका, भविष्य भी आया नहीं।
या फिर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों समान रूप से वास्तविक हैं, जैसे किसी नक्शे पर अलग अलग शहर होते हैं।
हाँ, इसे इटर्नलिज्म या ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। इस नजरिए से तो डायनासोर भी उतने ही असली हैं जितने हम, बस वे समय में कहीं और हैं।
सोचकर ही अजीब लगता है,
है ना? या फिर एक तीसरा रास्ता है, बढ़ता हुआ ब्लॉक सिद्धांत।
वो क्या कहता है?
ये कहता है कि अतीत और वर्तमान तो वास्तविक हैं, और ये वास्तविकता का ब्लॉक समय के साथ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भविष्य अभी खुला हुआ है। तय नहीं है।
ये शायद हमारे अनुभव से ज्यादा मेल खाता है कि हम अतीत को बदल नहीं सकते, पर भविष्य शायद हमारे हाथ में है।
हाँ, या कम से कम अभी बना नहीं है। मम्फोर्ड इन सब सिद्धांतों के पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हैं। वो नौकरी ले ली होती या अगर बारिश ना होती तो हम मैच जीत जाते, ये संभावित स्थितियां क्या हैं? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग में है?
यहीं पर वो डेविड लुईस वाला आइडिया आता है ना, वो समानांतर ब्रह्मांड वाला।
हाँ, संभावित दुनियाओं का।
उनका मानना था कि सचमुच में अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड मौजूद है जहाँ वो सब कुछ सच है जो हो सकता था।
मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी दुनिया है जहाँ मैंने वो नौकरी कर ली।
हाँ,
उनके सिद्धांत के अनुसार। ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये संभावनाओं को समझने का एक जरिया है।
मम्फोर्ड इस पर क्या कहते हैं?
मम्फोर्ड इस पर और इसके विकल्पों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि संभावनाओं को चीजों की शक्तियों से जोड़ना। मतलब कांच टूट सकता है क्योंकि उसमें टूटने की शक्ति है, न कि इसलिए कि किसी और दुनिया में वो टूट रहा है।
अच्छा, ये ज्यादा जमीनी लगता है।
हाँ, और आखिर में किताब मन, व्यक्ति और स्वतंत्र इच्छा जैसे बेहद व्यक्तिगत सवालों को भी छूती है।
मन और शरीर का रिश्ता, क्या हम वही रहते हैं अगर याददाश्त बदल जाए?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में अपनी मर्जी के मालिक हैं या हमारे सारे फैसले और काम पहले से ही तय हैं? डिटर्मिनिज्म।
ये सवाल तो मेटाफिजिक्स को सीधा हमारी जिंदगी के अनुभव और हमारी नैतिकता की समझ से जोड़ देते हैं।
बाप रे, ये तो वाकई दिमाग की कसरत है।
हाँ, तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सार को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटें तो मेरे लिए सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि मेटाफिजिक्स से बचा नहीं जा सकता। हम सब जाने अनजाने में मेटाफिजिकल धारणाएं रखते हैं, जैसे कि ये दुनिया सच है या कि कल भी सूरज उगेगा। मम्फोर्ड कहते हैं सवाल ये नहीं कि मेटाफिजिक्स करें या नहीं, बल्कि ये कि इसे अच्छे से करें या लापरवाही से।
सही बात है, यानी अपनी मान्यताओं को जांचें, परखें या बस आंख बंद करके मान लें। विचार कि दुनिया निष्क्रिय चीजों का जमघट नहीं बल्कि सक्रिय शक्तियों से भरी है, ये मुझे बहुत आकर्षित करता है। चीजें वैसी हैं जैसी हैं और वैसा करती हैं क्योंकि उनमें वैसी शक्तियां हैं। ये दुनिया को दिखने का एक ज्यादा डायनेमिक तरीका है।
जैसे हम कहते ना, इस मिट्टी में जान है,
ये कुछ वैसा ही है।
हाँ, कह सकते हैं। तीसरा, पहचान और बदलाव की पहेली।
ये सिर्फ दार्शनिकों का सिरदर्द नहीं है। हम सब सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कितना बदल गया हूँ।
बिल्कुल, भारत जैसे देश में जहाँ परंपरा और आधुनिकता, स्थायित्व और बदलाव के बीच लगातार एक संवाद चलता रहता है, ये सवाल और भी गहरे हो जाते हैं, समाज के स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी।
एक और बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगी वो ये कि मम्फोर्ड जोर देते हैं कि मेटाफिजिकल सोच मुश्किल नहीं, बस थोड़ी अलग है। हाँ, ये हमारी रोजमर्रा की सोच का ही एक गहरा और व्यवस्थित रूप है। जब हम पूछते हैं ये असली है या नकली, या सोचते हैं अगर ऐसा होता तो क्या होता, हम असल में मेटाफिजिक्स के दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते हैं।
किताब हमें उस दरवाजे को खोलना सिखाती है।
और अंत में ये समझना कि ये सारे विषय अस्तित्व, पहचान, कारण, समय, संभावना आपस में गुंथे हुए हैं।
हाँ, ये अलग अलग खाने नहीं है।
बिल्कुल, आप समय के बारे में क्या सोचते हैं ये आपकी पहचान की समझ को प्रभावित करेगा, आप कारण कार्य को कैसे देखते हैं ये आपकी संभावनाओं की सोच पर असर डालेगा। ये सब मिलकर हमारी वास्तविकता की समझ का एक ताना बाना बुनते हैं।
किताब में कई ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं। जैसे एक मुख्य विचार ये है जिसे मैं अपने शब्दों में कहूंगी, मेटाफिजिक्स सिर्फ अजीबोगरीब बातों या दूसरी दुनिया की कल्पनाओं के बारे में नहीं है। ये हर उस चीज की बुनियादी बनावट के बारे में है जो मौजूद है, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं।
ये बात मेटाफिजिक्स को जमीन पर ले आती है ना? ये कोई हवाई उड़ान नहीं बल्कि अपनी जड़ों को, अपनी बुनियाद को समझने की कोशिश है।
हाँ, ये बताती है कि इसका मकसद क्या है। एक और विचार, जब हम ये सवाल करते हैं कि क्या कोई चीज सच में मौजूद है या क्या हम वही इंसान हैं जो 10 साल पहले थे, तो हम असल में मेटाफिजिक्स ही कर रहे होते हैं।
हाँ, मतलब ये सवाल पूछना एकदम स्वाभाविक है, हमारी जिज्ञासा का हिस्सा है। मेटाफिजिक्स कोई बाहरी या थोपी हुई चीज नहीं है, ये हमारी अपनी सोच का ही एक रूप है।
मम्फोर्ड बस हमें इसे और ध्यान से करना सिखाते हैं।
सही, कार्य कारण पर मम्फोर्ड का ये नजरिया भी बहुत शक्तिशाली है। कार्य कारण सिर्फ एक चीज के बाद दूसरी चीज का होना भर नहीं है, बल्कि ये किसी वस्तु के अंदर मौजूद असली शक्ति का काम करना है। चीजें वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसी वे अपनी प्रकृति से होती हैं।
ये ह्यूमनिस्ट सोच को सीधी चुनौती है। ये दुनिया को ज्यादा सक्रिय, ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। चीजें सिर्फ हो नहीं रही, वे अपनी शक्तियों के कारण कुछ कर रही हैं।
हाँ, ये चीजों को सिर्फ वस्तु नहीं बल्कि एक तरह का कर्ता, एजेंट बनाता है।
और ये चेतावनी भी महत्वपूर्ण है, समय, कारण और पहचान के बारे में हमारी जो सहज समझ या अंदर की आवाज है वो मेटाफिजिकल जांच की शुरुआत तो हो सकती है लेकिन उसका अंत नहीं।
मतलब हमें अपनी गट फीलिंग पर सवाल उठाना सीखना होगा, उसे तर्क की कसौटी पर कसना होगा।
हाँ, हमारी पहली प्रतिक्रिया, हमारी आम समझ हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं।
मेटाफिजिक्स हमें गहरा सोचने और अपनी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए उकसाता है।
सुनने में यह सब बहुत एकेडमिक लग सकता है लेकिन इसके व्यवहारिक पहलू भी कम नहीं है। सबसे बड़ा फायदा तो बेहतर आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग है।
हाँ, ये हमें अपनी और दूसरों की बुनियादी मान्यताओं पर सवाल उठाना सिखाता है, चाहे वो कोई खबर हो, कोई राजनीतिक दावा हो या हमारी अपनी कोई पुरानी धारणा।
अब पूछना सीखते हैं, इसका आधार क्या है, क्या कोई और नजरिया भी हो सकता है।
बिल्कुल। और व्यक्तिगत पहचान वाली बात को ही लें, अगर हम सोचते हैं कि हमें हमारी यादें बनाती हैं, तो किसी की याददाश्त खो जाने पर हमारे रिश्ते और हमारे जिम्मेदारी की भावना कैसे बदलेंगी। अगर हम मानते हैं कि हमारा शरीर ही हम है, तो भविष्य में ब्रेन ट्रांसप्लांट जैसी चीजों के नैतिक सवाल क्या होंगे। ये सब मेटाफिजिक्स के सवाल हैं जो सीधे हमारी जिंदगी को छूते हैं।
विज्ञान की समझ भी बेहतर होती है।
कैसे?
कार्य कारण की गहरी समझ हमें सिर्फ दो चीजों को एक साथ होता देखकर ये मान लेने से रोकती है कि एक ने दूसरे को पैदा किया, मतलब कोरिलेशन और कॉजेशन का फर्क।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम वैज्ञानिक नियमों के बारे में ज्यादा गहराई से सोचते हैं, क्या ये नियम सच में मौजूद हैं या ये सिर्फ पैटर्न हैं जिन्हें हमने पहचाना है। मम्फर्ड का शक्तियों वाला नजरिया हमें इसे अलग तरह से देखने में मदद करता है। नैतिकता और न्याय के क्षेत्र में तो इसका सीधा असर है। सोचिए, अगर स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, सच में नहीं है जैसा कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं,
तो फिर
किसी को उसके कर्मों के लिए सजा देना कितना सही है? क्या हम सच में अपने चुनावों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं?
ये सवाल तो हमारे पूरे कानूनी और नैतिक ढांचे की नींव हिला सकते हैं।
बिल्कुल। और हाँ, एक बहुत ही बुनियादी फायदा, बेहतर संवाद, कम्युनिकेशन का।
वो कैसे?
मेटाफिजिक्स हमें शब्दों को सावधानी से इस्तेमाल करना सिखाता है। जब हम सच, कारण, पहचान, अधिकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हमारा और सामने वाले का मतलब एक ही है?
हाँ, अवधारणाओं को स्पष्ट करना किसी भी सार्थक बहस या बातचीत के लिए बेहद जरूरी है।
तो फिर इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से हम क्या लेकर जा सकते हैं? आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि मेटाफिजिक्स कोई हवा नहीं है जिससे डरने की जरूरत हो। ये हमारे सबसे बुनियादी सवालों से जुड़ा है और मम्फर्ड की किताब दिखाती है कि हम तर्क और स्पष्ट सोच के जरिए इन सवालों से जूझ सकते हैं। ये विषय को सुलभ बनाती है।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प विचार ये है कि दुनिया शायद उतनी निष्क्रिय नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये शक्तियों और संभावनाओं से भरी एक सक्रिय जगह हो सकती है।
हाँ, ये दुनिया को देखने का एक ज्यादा गतिशील नजरिया है।
बिल्कुल। और साथ ही ये एहसास कि कैसे ये बड़े अमूर्त लगने वाले सवाल हमारी पहचान, हमारी नैतिकता, हमारी जिम्मेदारी और यहाँ तक कि विज्ञान की हमारी समझ को भी गहराई से छूते हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि सतह के नीचे हमेशा और भी बहुत कुछ होता है।
हाँ, ये किताब हमें सोचने के नए औजार देती है। ये हमें सिर्फ दार्शनिक सवालों के बारे में नहीं बल्कि किसी भी जटिल मुद्दे के बारे में ज्यादा गहराई से सोचना सिखाती है।
ये एक रिमाइंडर है कि जिज्ञासा बनाए रखें और सवाल पूछते रहें।
और शायद यही वो अंतिम विचार है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। अगर दुनिया सचमुच शक्तियों और संभावनाओं से भरी है जैसा मम्फर्ड सुझाते हैं, तो इसका हमारे अपने जीवन के लिए क्या मतलब है? हमारी अपनी क्षमताएं क्या हैं और हम वास्तविकता को आकार देने में कितनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्री फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।